ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ब्रह्म विमोहन लीला की कथा चल रही है। पिछली बार हम देख रहे थे कि ब्रह्मा जी जब पृथ्वी लोक पर वृंदावन में लौटकर आए, उनके एक क्षण के बाद अर्थात पृथ्वी लोक के एक साल के बाद, तो उनको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो ग्वाल बाल और वत्सों को चुराए थे वो वैसे के वैसे उसी गुफे में पड़े हुए थे जैसे कि उन्होंने एक साल पहले उन्हें रखे थे। ब्रह्मा जी के माया शक्ति के शैया पे वो लेटे हुए थे, लेकिन कृष्ण भगवान उधर वन में यमुना जी के तट पर वैसे ही लीला कर रहे थे जैसे कि वो हर रोज किया करते थे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ग्वालबार और वत्स एक ही समय दोनों स्थान में कैसे हो सकते हैं, उस गुफे में भी हैं और वन में भी हैं, कौन से असली हैं कौन से नकली हैं, ये कैसे है कि दोनों ग्वालबार और वत्स के दो दो रूप हो गए, ये कैसे संभव है, हुआ क्या है, क्या नकली वाले यहां हैं या नकली वाले वहां हैं, एक कोई असली होना चाहिए एक नकली होना चाहिए, दोनों तो असली नहीं हो सकते, या तो फिर क्या ऐसा है कि एक ही है लेकिन जब मैं गुफे में जाता हूं देखने के लिए तो कृष्ण भगवान मुझसे तेजी से आगे चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं और यहां के सारे ग्वाल बाल और वत्सों को वहां रख देते हैं ताकि जब मैं वहां पहुंच जाता हूं तो देखता हूं कि ये बालक और वत्स वहां है, और जब मैं फिर से नदी के तट पर आने की सोचता हूं तो उसके पहले ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण उन वत्सों को और ग्वाल बालों को फिर से जल्दी से उठाकर वहां नदी के तट पर ले आते हैं मेरे वहां पहुंचने के पहले, क्या ऐसे हो रहा है। तो लंबे समय तक सोचते सोचते ब्रह्मा जी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके, और ऐसे भ्रमित अवस्था में ही सोचते सोचते अचानक भगवान ने और उनकी योग माया का प्रदर्शन किया, और इस प्रदर्शन को देखकर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। वैसे ही जब ब्रह्मा जी इन दो तरह के वत्सों को और ग्वाल बालों को देख रहे थे तो उनको बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने क्या किया, मेरी शक्ति कृष्ण भगवान की शक्ति के सामने तो बिल्कुल तुच्छ है, लेकिन मैं कितना मूर्ख था कि जैसे एक जुगनू अपने प्रकाश को सूरज के सामने दिखाने की चेष्टा करता है, जुगनू तो मूर्ख ही कहलाएगा, उसी तरह से ब्रह्मा जी अपने आप को धिक्कार रहे थे कि मैं कितना मूर्ख हूं, भगवान कृष्ण के सामने मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। इस तरह से पश्चाताप करते हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए थे वहां पर, और जैसे ही वो विस्मित अवस्था में खड़े थे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया शक्ति योग माया शक्ति एक अद्भुत रूप से प्रस्तुत की। कैसे प्रस्तुत की यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तावत् सर्वे वत्सपालाः पश्यतो यस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेय वाससः। सुंदर श्लोक। तावत् सर्वे वत्सपालाः, तो उस समय सारे जो ग्वालबाल हैं और जो वत्स हैं, पश्यतः जैसे ही ब्रह्मा जी देख रहे थे उस समय तत्क्षणात् उसी क्षण में व्यदृश्यंत उन्होंने देखा, क्या देखा, घनश्याम पीत कौशेय वाससः, उन्होंने भगवान विष्णु के ही रूप देखे, जिनका वर्णन कैसा था, घनश्याम, बरसात के बादल की तरह उनकी अंग की कांति थी। पीत कौशेय वाससः, और उन्होंने कपड़े कैसे पहने थे, पीत रंग के, पीले रंग के, पीतांबर, विष्णु या कृष्ण पीतांबर पहनते हैं, तो ये भगवान कृष्ण का यूनिफॉर्म होता है। और उसी तरह से वो ऐसे सुंदर सुंदर पीत रंग के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे जैसे ब्रह्मा जी देख रहे थे, अचानक उन्होंने इतने सारे विष्णु मूर्ति देखे, जितने की वत्स थे और जितने ग्वाल बाल थे, और उनके सारे पीतांबर पहने हुए थे और सारे घनश्याम। घनश्याम भी भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि उनके शरीर का रंग वैसे होता है। और जैसे जैसे भगवान ब्रह्मा जी देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इन सारे विष्णु मूर्ति के रोम या रोंगटे खड़े हुए थे आनंद की वजह से, और उनके त्वचा से पसीना बह रहा था, पसीनों के बूंद आ रहे थे, और ये ऐसे लग रहा था कि ये पसीने के बूंद ऐसे हैं जैसे कि महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु जी कारण सागर में विश्राम करते हैं, और उस सागर से उनके रोम 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 से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर कारण सागर में तैरते हैं। तो ऐसे लग रहा था ब्रह्मा जी को देखते देखते कि इनकी त्वचा से जो सब पसीने के बूंद आ रहे हैं, ये दिव्य दिव्य पसीना, हमारे जैसा पसीना नहीं है, हमें टेलकम पाउडर और ये वो सुगंध लगाने पड़ते हैं पसीनों को रोकने के लिए, स्नान करना पड़ता है, लेकिन भगवान का जो पसीना है वो दिव्य होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये समुद्र है ना, सब समुद्र, नदियां इत्यादि, विरजा, ये सब भगवान के पसीना है। तो भगवान के इतना पसीना होता है कि वो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सागर भर देते हैं। तो देखिए, हम साधारण व्यक्ति, हमारा पसीना कितना आता है, जितना भी कीर्तन करें गर्मी के दिन में भी पसीना आता है, एक कमीज गीला हो जाता है बस, लेकिन क्या बाल्टी बाल्टी भरकर पसीना हम निकाल सकते हैं, नहीं, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर इतनी क्षमता है कि पसीना भी निकालना है तो सागर भर भर के अनंत कोटि ब्रह्मांडों में वो भर डालते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से यहां पर विष्णु मूर्तियों के पसीने आ रहे थे, और ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा था कि ये सब ब्रह्मांड है जो निकल रहे हैं। और आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इन विष्णु मूर्तियों का, बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। चतुर्भुजाः शंखचक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिणो वनमालिनः। चतुर्भुजाः, उनके चार भुजाएं थे, विष्णु मूर्ति के चार भुजाएं होते हैं, कृष्ण के दो, कृष्ण और बलराम के अलावा सारे जो भी भगवान के रूप होते हैं वो चतुर्भुज के होते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु प्रभु रामचंद्र भी हैं, लेकिन अन्य जो विष्णु रूप होते हैं प्राय वो चतुर्भुज के, वैकुंठ में, वैकुंठ नारायण चतुर्भुज वाले होते हैं। पाण यह, पाणी मतलब क्या है, पाणी, हाथ, पानी नहीं, पाणी, पाण यह, अपने हाथों में कर कमलों में उन्होंने क्या धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा राजीव, राजीव मतलब कमल, कमल के लिए कितने सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं संस्कृत भाषा में, तो राजीव भी और एक शब्द है कमल के लिए। तो उन्होंने अपने चतुर्भुजों में ये शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ था। किरीटिणः, सुंदर किरीट, मुकुट था। कुंडलिनो, कानों में सुंदर कुंडल। हारिणो, वनमालिनः, मोतियों की हार, मोतियों की माला पहनी हुई थी। और वनमाला, भगवान कौन से वनमाला पहनते हैं, वैजयंती। वैजयंती की विशेषता क्या होती है, अलग अलग तरह के रंगों के फूलों से बनाई हुई होती है, पांच तरह के रंगों के फूल होते हैं, इससे इसको एक दूसरे में मिलाकर ये वैजयंती माला बन जाती है। तो भगवान ने ये माला पहनी हुई थी, वन मालिनः। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, श्रीवत्सांगद दोरत्न कंबू कंकण पाणय नूपुरहि कटकैर्भाता कटी सूत्रांगुलीय कैः। श्रीवत्स भगवान के वक्षस्थल पे श्रीवत्स था। दो रत्न कंबू, रत्न कंबू, कंबू मतलब गला, गले का विभाजन तीन भाग में हुआ था ऐसे उनका सुंदर लग रहा था, और इस गले में क्या था, कौस्तुभ मणि रत्न। अब ये जो चतुर्भुजाओं के रूप होते हैं ना, जैसे यहां वर्णन हो रहा है, सारे गहने आभूषण और ये इत्यादि, ये विष्णु विष्णु लोक में अर्थात वैकुंठ में जिन भक्तों ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की है उनको भी ऐसे ही होता है। सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात भक्तों को ऐसे ही बिल्कुल रूप मिल जाते हैं, चतुर्भुज, किरीट, वनमाला, पीताम्बर इत्यादि। लेकिन इन सारे भक्तों के चतुर्भुज रूपों में और विष्णु के चतुर्भुज रूपों में एक ही अंतर होता है, वो क्या होता है, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स। ये दो चिन्ह हैं भगवान विष्णु के, जिससे हम वैकुंठ लोकों में पहचान सकते हैं कि विष्णु कौन है और उनके भक्त कौन है, नहीं तो दिखने में बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर नहीं, केवल ये दो चिन्ह हैं। श्रीवत्स वैसे क्या है, एक पीले रंग का केश है, बाल है, छोटा सा इतना है, जो कि भगवान के बाएं तरफ वक्षस्थल में है, ये है श्रीवत्स। और कौस्तुभ मणि गले में है, सुंदर मणि है। इस तरह से यही दो चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं विष्णु को। कंकण, उनके हाथों में कंकण थे और एक कंकणों की झिनझिनझिन मधुर ध्वनि आ रही थी, क्योंकि भगवान जो खड़े थे अनंत विष्णु रूप देखे ब्रह्मा जी ने, तो वो ऐसे मूर्ति की तरह खड़े नहीं थे, वो हिल रहे थे, अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, कमल पुष्प यूं हिला रहे थे, तो जैसे जैसे हाथ हिल रहे थे उनके कर कमल, तो वैसे जो हाथों में कंकण थे उनका झिनझिन झिनझिन हो रहा था बहुत मधुर ढंग से। कंकण पाणय, हाथों में कंकण था। नूपुर ही कटकैर भाता, उनके चरण कमलों में नूपुर कटकैर ऐसे आदि आभूषण थे, और इस तरह से वो बहुत सुंदर लग रहे थे। और कटी सूत्र अंगुली यकाई ही, उनके कमर में पट्टे थे और पट्टों में क्या थे, छोटे छोटे घंटियां थी, और ये पट्टियां भी बड़े कोमल नाजुक से स्वर ध्वनि कर रहे थे, छिन 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 कर रहे थे। तो ये पूरा दृश्य जो है भाता बड़ा आकर्षक था। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी इन सारे विष्णु रूपों को देख सकते हैं। वैसे भी ब्रह्मा जी को ये रूप का दर्शन वैसे नहीं होता, जब वो क्षीरोदक सागर में भी जाते हैं कुछ प्रार्थना करने के लिए, तो क्षीर सागर के तट पे उनको बैठना पड़ता है ध्यान में। क्षीरोदक शाय विष्णु उनको साक्षात दर्शन नहीं देते हैं, केवल ध्यान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को अंदर ही अंदर से क्षीरोदक शाय विष्णु ज्ञान दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, कभी कभी यज्ञ के फल स्वीकार करने के लिए साक्षात विष्णु आ जाते हैं, केवल उस समय देवी देवता उनका दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो साधारणतः यह संभव नहीं है। लेकिन इस बार ब्रह्मा जी अनंत कोटि विष्णु रूपों का दर्शन कर रहे हैं, सारे वत्स ग्वाल बाल सबको, और यही सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। आगे इस सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। अंघ्रि मस्तक मापूर्णास तुलसी नवदाम भी कोमल ही सर्व गात्रेषु भूरि पुण्यवत अर्पितैः। आ अंघ्रि मस्तकम्, अंघ्रि मतलब उनके चरण कमल, मस्तक मतलब उनका सिर, आ अंघ्रि मस्तकम् मतलब अंघ्रियों से लेकर मस्तक तक। क्या था, आपूर्णाः, पूरी तरह से आभूषित था, नाना प्रकार के आभूषण गहने वगैरह पहने हुए थे भगवान ने, कहां से, अंगरी से लेकर मस्तक तक, सारा शरीर में, सारा शरीर इस तरह से आभूषित था। और क्या आभूषण थे भगवान के दिव्य शरीर के ऊपर, तुलसी नवदाम भी कोमलैः, कोमल नए फ्रेश तुलसी पत्तों और मंजरी के का एक माला पहना हुआ था जो उनके जंघों तक आ रहा था। और इस तुलसी माला के इर्द गिर्द भ्रमण कर रहे थे कई तरह के भंवरे, भंवरे करते हुए भ्रमण कर रहे थे। जहां भी कृष्ण बलराम घूमते हैं वृंदावन में भी, तो अवश्य उनके साथ में भंवरे घूमते रहते हैं। क्यों? भंवरे कहां पाए जाते हैं? भंवरों का काम क्या होता है? क्या तैयार करते हैं? मधु निकालते हैं ना। और भगवान का सौंदर्य और खास करके भगवान के चरण कमल एक ऐसे आसव है, ऐसा पेय है जो बिल्कुल मधु के बराबर है। तो इसलिए ये सारे भंवरे होते हैं हमेशा भगवान के इर्द गिर्द घूमते हैं, क्योंकि उनको वही मिठास मिल जाती है भगवान के सुंदर रूप में और खास करके तुलसी के माला में। तो बताया गया है तुलसी के माला कैसे हैं, ऐसे कोमल और नए नए, नव दाम भी कोमल ही। तो फ्रेश जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, फूल और माला इत्यादि पत्ते, वो बिल्कुल नए फ्रेश होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। हमें भी ये इच्छा होनी चाहिए कि एक दिन शायद हम इस तरह से भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कर पाए कि हर रोज कृष्ण भगवान को एक तुलसी की माला हम पहना सकें। अगर भगवान चाहें तो ये संकल्प हम एक दिन लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। शायद अभी तो तैयार नहीं है, लेकिन एक दिन, और खास करके जब बड़ा मंदिर बनेगा, विग्रह बड़े होंगे, तो कृष्ण भगवान को फूलों की माला के अलावा तुलसी की माला रोज अर्पण करने का संकल्प हम भविष्य में कभी भी कर सकें तो ये अच्छी सेवा होगी भगवान के लिए। लेकिन एक बार ये संकल्प लेंगे तो रोज करना होगा, तुलसी की माला रोज अर्पण करनी होगी भगवान। और माला भी अर्पण करेंगे फूलों की माला, तो कैसे? जैसे वैजयंती माला, अलग अलग रंग बिरंगी रंगों के, केवल अष्टर और वैसे पहना वैसे नहीं, अच्छे अच्छे गुलाब, नाना मोगरा, चंपा, अलग अलग तरह के सुगंधित फूलों के रंग बिरंगी माला जंघों तक पहुंचते हुए, ऐसे माला आशा करते हैं कि एक दिन हम लोग भी अर्पण कर पाएंगे। तो विष्णु मूर्तियों का ऐसे सुंदर रूप दर्शित हो रहा था ब्रह्मा जी को। तो ये तुलसी माला है, केवल विष्णु रूप को अर्पण किए जाते हैं और किसी को नहीं। राधा रानी भी तुलसी का हार स्वीकार नहीं करती, इसलिए राधा रानी को तुलसी का हार अर्पण नहीं करना चाहिए। राधा रानी के हाथ में दे सकते हैं तुलसी की माला, क्यों? ताकि वो कृष्ण को अर्पण कर सके। लेकिन राधा रानी को भी तुलसी माला अर्पण नहीं कर सकते, केवल विष्णु रूप को अर्पण कर सकते हैं। तो यहां पर तुलसी माला का वर्णन सुंदर रूप से है। सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवत अर्पितैहि। और यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये तुलसी की माला किसने अर्पण की थी, किन्होंने अर्पण की थी? उन भक्तों ने जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं। भूरि पुण्यवत अर्पितैहि, अर्पण किया हुआ था उन लोगों ने भूरि पुण्यवत, भूरी मतलब बहुत ज्यादा, अधिक मात्रा में, जिन्होंने पुण्य किए हैं। दूसरे शब्दों में, जो पुण्यवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं, वही जाकर आगे भगवान की सेवा कर सकते हैं। येषां त्वन्तगतं पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते मोहद्वन्द निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। दृढ़ता से भगवान का भजन कौन कर सकता है? केवल वो व्यक्ति येषां तु अंतगतं पापं, जिनके सारे पाप क्षीण हो गए हैं, नष्ट हो चुके हैं। जनानां पुण्यकर्मणां, जिनके पुण्य या सुकृति की मात्रा अधिक पर्याप्त मात्रा से बढ़ चुकी है, वही एकमात्र भगवान की दृढ़ता से भजन कर सकते हैं। यहां जिस पुण्य की बात हो रही है वो साधारण पुण्य नहीं है, भौतिक पुण्य नहीं है। भौतिक पुण्य के उदाहरण क्या है कोई देंगे आप? समाज सेवा अर्थात पानी देना, सबको कुएं खोदना, या ऐसे वृक्षारोपण करना जिससे कि छाया आ जाए सबके लिए, है ना, विद्यालय खोलना, पुस्तकें बांटना, अंधों की सेवा करना और भोजन देना लोगों को, गरीबों की इस तरह से सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, तो ये सारे चीजें उदाहरण हैं भौतिक पुण्य के। इनसे क्या लाभ प्राप्त होता है? पुण्य है, लेकिन पुण्य का फल क्या होता है? स्वर्ग लोक, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? भोग करेंगे। तो वहां भोग करके फिर क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब वो पुण्यों का स्टॉक जो है वो समाप्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है, मर्त्य लोकम विशंति, फिर से यहाँ पृथ्वी लोक पर लौटकर आना पड़ता है। तो केवल भौतिक पुण्य करने से हमें केवल स्वर्ग लोक में भोग करने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन भगवान के दिव्य स्वरूप या दिव्य रूप को तुलसी माला अर्पण करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो कौन वो व्यक्ति है जिसको भगवान के गले में तुलसी माला पहनाने का अधिकार होगा? जिसने भक्ति की है। तो यहाँ जो भूरी पुण्यवत है ये भक्ति की सुकृति है, साधारण भौतिक सुकृति की बात नहीं हो रही है। इसलिए आप सब भी भूरी पुण्यवत हैं, क्योंकि आप सभी भगवान की सेवा करते हो, भगवान के लिए माला बनाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, भगवान के लिए कपड़े सिलाते हो, नाना प्रकार की सेवा भगवान के लिए करते हो, तो आप भी भूरी पुण्यवत है। आपने भी भूरी भूरी बहुत सारे भक्तोन्मुख सुकृति किए हैं, इसलिए आपको ये अधिकार है, ये पुण्य मिल गया है। तो हमें कितने अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। केवल जो भूरी पुण्यवत हैं वही भगवान को ऐसी सेवा कर सकते हैं, और क्योंकि विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसलिए ऐसे समझना चाहिए कि हम जब भगवान के विग्रह को तुलसी माला अर्पण कर रहे हैं, मानो वैसे ही जैसे कि इस श्लोक में वर्णन आ रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना जब की तो उस इलाके में एक तमाल वृक्ष था, और मंदिर को ऐसे बनाया गया कि वो तमाल वृक्ष मंदिर के आंगन में आ गया। आपने देखा होगा, आप में से कितने लोग वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में गए हैं? तो कृष्ण बलराम मंदिर के आंगन में एक बड़ा वृक्ष है, आपने देखा है, तमाल वृक्ष। तो जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो उस समय वृक्ष प्राय मर चुका था, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब से भक्तों ने यहां संकीर्तन करना आरंभ किया और बड़े शानदार ढंग से राधा श्याम सुंदर गौर निताय और कृष्ण बलराम की सेवा करना आरंभ किया, तब से वो वृक्ष जो है बिल्कुल अच्छी तरह से मानो के प्रफुल्लित हो गया है, खिल गया है उधर। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये उदाहरण है पुण्य, भूरी पुण्य का। जिस तरह से कोई पुण्य करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो सब कुछ कैसे खिल जाता है उस वातावरण में, इसी तरह से आप सबकी भूरी पुण्य की वजह से ये मंदिर भी खिल रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है। पहले ये जगह क्या था? कसाई खाना था। पहले यहाँ चमड़े का व्यवहार होता था, गायों की हत्या करके चमड़ा लाया जाता था, फिर इसका ये सब होता था, और यहाँ इस इलाके को कोई भी पूछता नहीं था। सुनसान जगह, भूत बंगले की तरह पड़ा रहता था, कोई प्रगति नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब से आप सब यहाँ आए, इधर भजन कीर्तन करने लगे, भगवान की सेवा करने लगे, तब से देखिए इसका चेहरा ही बदल चुका है इस जगह का। इसलिए इस लोग को, इस जगह को लोग अभी सब जगह आ रहे हैं रहने के लिए। लोग घर बना रहे हैं आसपास, पहले तो कोई पास में भी नहीं आता था, गलती से भी लोग दूर से ही चले जाते थे, सोचते थे यहाँ भूत है, न जाने क्या क्या है। सही बात है, लोग पास में भी नहीं आते थे, लेकिन आजकल यहाँ लोग इतनी कीमत हो गई, यहाँ जमीन की लाखों रुपए दे रहे हैं लोग यहाँ पास में आने के लिए। ये सब प्रभाव है, भूरी पुण्य का प्रभाव है ये। तो ये सब आप सबके संकीर्तन का और सेवा का फल है, इसीलिए मिल रहा है। तो सोचिए कि जिन ग्वाल बालों ने भगवान का संग किया वृंदावन में, उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक पुण्य। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेना मायाश्रितानाम नरदारकेना साकं विजहरो कृत पुण्य पुंजा। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं सताम, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, लेकिन वो भगवान के निराकार स्वरूप में रमण करते हैं। इत्थाम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया, अनुभूति करते हैं ब्रह्म सुख का। ब्रह्म सुख मतलब क्या? निराकार का सुख। संसार में लोग ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे हैं। ब्रह्म और ब्रह्म, इसमें अंतर होता है ना। ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या? जो माया है, ब्रह्म, वो है ब्रह्म। तो संसार में लोग ब्रह्म में होकर सुख की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, और जो निराकारवादी हैं वो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि परब्रह्म क्या है? निराकार ब्रह्म, और उसी में आनंद लेते हैं। और फिर ऐसे हैं जो लोग माया में हैं, माया श्रिता नाम, जो माया का आश्रय लिया है, वो सोचते हैं कि ये कृष्ण नरदारकेण, एक साधारण बालक है, भगवान थोड़ी है ये। और फिर जो परदैवतेन, जो साधारण जो भक्त होते हैं, दास के रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपने आप को दास और भगवान को प्रभु मानते हैं, परदैवतेन, भगवान को प्रभु मानते हैं इस बालक को, लेकिन ये जो ग्वाल बाल हैं, जो कृष्ण के संग में खेल रहे हैं, वो भगवान को क्या मान रहे हैं? अपना सखा, अपना मित्र मान रहे हैं, और उसके संग खेल रहे हैं। साकम विजहरुहु, विजहरुहु मतलब आनंद ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कृत पुण्य पुंजा, उनकी पूंजी क्या है? पूंजी मतलब समझे ना, पूंजी क्या है? धन, उनकी धन, उनका धन क्या है? जिसके जिसके वजह से वो इसको खरीद सके हैं, कृष्ण को खरीद सके हैं। कृत पुण्य, बहुत सारे पुण्य किए हैं उन्होंने, इसलिए उनको ये धन प्राप्त हुआ है, और इस धन से वो भगवान को खरीद चुके हैं, और इसीलिए भगवान को अपना सखा मान रहे हैं। तो इस पुण्य की बात हो रही है इस श्लोक में, साधारण पुण्य के नहीं, जिस पुण्य को किया है ग्वाल बालों ने पूर्व जन्मों में, क्योंकि ये सारे ग्वाल बाल पूर्व जन्मों में बड़े बड़े ऋषि थे, बड़ी सेवा की थी भगवान की, बड़ी तपस्या की थी इन्होंने, इसलिए आगे चलकर उनको ग्वाल बाल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। आगे और वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी इन विष्णु मूर्ति स्वरूपों का। चंद्रिका विशद स्मेरे सारुणापांग वीक्षित स्वकार्थानाम इव रजह सत्वाभ्याम सृष्टि पालका। ये विष्णु रूप जो है बड़े सुंदर ढंग से हंस रहे थे, मुस्कान उनके सुंदर मुखारवंद में मुस्कान थी। स्मेरितई मतलब हंसना नहीं, एक हल्का सा मुस्कान होता है, इसको स्मेरम कहते हैं। और जब हंसते हैं तो हाँ करके हम सब दांत दिखाते हैं ना, लेकिन स्मेरई मतलब बहुत हल्की सी मुस्कान, ये भगवान की विशेषता है इनकी, इनके हंस, इनके मुस्कान की। इसलिए दूसरी जगह भी बताया जाता है, रूप गोस्वामी बताते हैं, स्मेरी भंगम भंगी त्रय परिचताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, हल्के मुस्कान उनका होता है। और चंद्रिका विशद, ये स्मेर मुस्कान जो है बड़ा शुद्ध पवित्र था, और चंद्रिका जैसे पूर्ण पूर्णिमा के समय जो चांद होता है, चांद के बढ़ते हुए तेज और प्रकाश के जैसे उनका मुस्कान था, वैसे ये प्रकाश फैल रहा था केवल उनके मुस्कान से। देखिए भक्त को भी कवि होना चाहिए। कवि के दो अर्थ होते हैं, कवि का एक ये अर्थ होता है जो कविता लिखता है, काव्यात्मक दृष्टि से जो सब कुछ देखता है, और कवि का मतलब ये भी होता है तो दार्शनिक होता है। तो भक्तों को दोनों होने चाहिए, दार्शनिक भी होने चाहिए और कवि भी होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज जाकर आप कविता लिखना शुरू कर दें, लेकिन इस काव्यात्मक वर्णन को समझने के लिए, सुनने के लिए इच्छा होनी चाहिए, इसमें रस निकलना चाहिए। देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें यहां पे बताई हैं। चंद्र का विशद स्मेरे ही, उनके मुस्कान चांद की तरह है, पूर्णिमा के चांद की तरह, अमावस्या के चांद की तरह नहीं, पूर्णिमा के चांद की तरह है। और स अरुण अपांग वीक्षित ही, वीक्षित ही मतलब उनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि कैसी है, जैसे कि स अरुण अपांग, अरुण मतलब लाल रंग के, तो लाल रंग के बहुत शुद्ध दृष्टि अपने लाल लाल आंखों से, लेकिन ऐसे लाल नहीं जैसे आदमी क्रोध में हो जाता है, ये बहुत मधुर लाल रंग है, कुमकुम जैसा, उदित सूरज के जैसा। और वैसे कैसे देख रहे हैं, सीधे नहीं देख रहे, यूं साइड से, साची विस्तीर्ण दृष्टिम स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम। ये रूप गोस्वामी वर्णन करते, साची विस्तीर्ण अर्थात जो इस तरह से देख रहे हैं भगवान, सीधे नहीं देखते, तो इस दृष्टि में बड़ा एक सौंदर्य है जो भक्त लोग ही पहचान सकते हैं। और आगे बताते हैं स्वक अर्थानाम, इस दृष्टि से वो अपने भक्तों के स्वक अर्थानाम की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। सृष्टिर पालक, इनको इन भक्तों की इच्छा जागृत कर रहे थे और फिर उनका पालन भी कर रहे थे। मानो कि इव रज सत्वाभ्याम, जैसे कि रजगुण और सत्वगुण होता है। अब रजगुण का काम क्या होता है संसार में, रजगुण क्या करता है, रजगुण का प्रभाव हमारे ऊपर क्या होता है, टेंशन में रहते हैं हाँ, लेकिन क्या कैसी भावनाएं जागृत होती है हमारे अंदर रजगुण की वजह से, भोग की भावनाएं, वासनाएं, अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में जागृत हो जाती हैं, किसके प्रभाव से, रजगुण के प्रभाव से। तो रजगुण का प्रभाव यह होता है कि हमें उत्तेजित करता है, हमें विचलित करता है। रजगुण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, सही है। अगर आपको भगवान की सेवा भी करनी है तो उसके लिए भी थोड़ा रजगुण की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे भक्त बहुत ज्यादा राजसिक हो जाते, बहुत ज्यादा भाग दौड़ इधर उधर, लेकिन सत्वगुण के जो कार्य है, एक जगह ठंडे से बैठकर सुनना, जपना, पढ़ना, उसमें कम लगते हैं भक्त लोग। तो इसलिए कभी कभी हमारे भक्तों को रजोगुण से सत्वगुण में आना चाहिए, ताकि कभी कभी शांति से बैठकर पढ़ें, सुने। लेकिन ऐसे क्या होता है, क्योंकि हमारे भक्त सत्वगुण में बैठने के आदि नहीं है, इसलिए रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर आने के बजाय रजोगुण से तमोगुण तक नीचे चले जाते हैं, इसलिए श्रवण करते करते सो जाते हैं। ये सोना जो है निद्रा, यह तमोगुण का लक्षण है, और ध्यान से एक जगह बैठकर शांति से सुनना, यह सत्वगुण का लक्षण है। तो देखिए, अपने मन ही मन में कल्पना कीजिए कि कब आप सत्वगुण में रहते हैं और कब तमोगुण में चले जाते हैं, इसी एक स्थान में, इसी एक चटाई पर बैठे हुए। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कभी कभी कहा करते थे, अरे सत्वगुण की बात तो दूर है कि मैं आशा करता हूं कि मेरे भक्त कभी रजगुण में आ जाए, तमोगुण से रजगुण में आ जाए, ज्यादा 10 घंटे सोना, 8-9 घंटे सोना। हमारे भक्त कभी कभी इधर उधर जाके गार्डन में भी सो जाते हैं, गार्डन में जाके सोना दिन में, और इस तरह इसके बजाय थोड़ा भगवान की सेवा कर ले, अच्छा है। और जो भी रजोगुण की प्रवृत्ति है उसको भी भगवान की सेवा में लगाना। अभी प्रभुपाद जी यहां टीका में बताते हैं कि ये रजोगुण का वर्णन जो किया हुआ है, ये भौतिक रजोगुण नहीं है, ये प्रेम है भगवान का। जैसे भगवान अपने दृष्टि से प्रेम देते हैं, या सुंदर रूप से बताया है कि अपने मुस्कान से भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं और अपने दृष्टि से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। रजोगुण, रजोगुण मतलब ये प्रेम है, दिव्य प्रेम है। तो जब भगवान देखते हैं, दृष्टि करते हैं, तो फिर सभी लोग प्रेरित हो जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए। जैसे हम अनुभव करते हैं कि जब क्लास दे रहे होते हैं तो किसी के ऊपर देखते हैं तो सोया वो आदमी हाँ जाग जाता है, नहीं सोना नहीं चाहिए, दृष्टि से जो है जाग जाते हैं लोग। और जब आप एक दूसरे के साथ हंसते हो, मुस्कान करते हो, तो हृदय से अच्छा लगता है, ये पालन पोषण, एक प्रेम की भावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान अपने दृष्टि से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने लोगों भक्तों को, और अपने मुस्कान से क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं, भरण पोषण इत्यादि करते हैं। अभी भक्तों के हृदय में तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, खास करके जो वैकुंठ के भक्त हैं, अर्थात आध्यात्मिक धाम में रहने वाले भक्त, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। इसका मतलब है कि ये रजह जो भगवान की दृष्टि से जो भी इच्छाएं जागृत होती हैं केवल भगवान की सेवा के लिए होती है। इच्छा रखना ये बुरी बात नहीं है, कई मायावादी दार्शनिकों का मत है और इस धारणा का प्रचार भी करते हैं वो, कि हमें इच्छाओं को शून्य करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। इच्छाओं को शून्य नहीं करना है हमें, हमें इच्छाओं को भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। भौतिक रजोगुण से भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं, लेकिन जिस रजोगुण का वर्णन यहां इस श्लोक में हो रहा है वो प्रेम है भगवान का, जिससे भगवान की सेवा करने के लिए अनेक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। कृष्ण भावना में आपकी कितनी ही इच्छा हो सकती है, आप कितने तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्या नंबर है, कितने हैं बताइए, 108, 1008 कितने हैं, अनगिनत है। आप कितने भी तरह से भगवान की सेवा कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। और यही प्रवृत्ति, इच्छा करने की प्रवृत्ति विकृत रूप में भौतिक भोग में लग जाती है। भोग करने के लिए कितने तरीके हैं, अनगिनत। उसी तरह से भगवान के भक्ति करने के लिए अनगिनत तरीके हैं। क्योंकि भगवान के सेवा करने के लिए अनगिनत तरीके हैं, इसलिए इसका विकार जब हो जाता है तो वो भोग में लग जाता है, इसलिए भोग करने की प्रवृत्ति भी अनगिनत तरीके से हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि स्वकार्थानाम, अपने भौतिक, अपने भक्तों की इच्छा का मतलब है जो आतुरता भक्तों में रहती है भगवान की सेवा करने के लिए। और उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने क्या देखा आगे, कि सारे चर अचर प्राणी, सारे ब्रह्मांड के सारे प्राणी, छोटे से चींटी से लेकर खुद ब्रह्मा जी तक, सारे वहां उपस्थित हैं और अनेक अनेक रूप धारण किए हुए वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के प्राणियों को देखा भगवान की सेवा करते हुए। वास्तव में हर एक प्राणी भगवान की सेवा करता है, ये मालूम है आपको, हर एक प्राणी। प्रभुपाद जी बताते थे हर एक प्राणी भगवान की सेवा कर रहा है या भगवान को देखने का प्रयास करता है या इच्छुक होता है। फर्क इतना है कि थोड़े प्राणी इस बात को जानते हैं और थोड़े नहीं जानते। नास्तिक से नास्तिक भी भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति में आ जाता है तब उसकी सेवा जो है पूरी तरह से प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाने हम, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जैसे जो व्यक्ति मुझसे आदान प्रदान करने का इच्छुक है वैसे मैं आदान प्रदान करता हूं, और सारे प्राणी मम वर्तमान वर्तन्ते, सारे प्राणी मेरे पथ में चल रहे हैं अर्जुन, मनुष्यः पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य मेरे पथ में चल रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है, थोड़े मनुष्य मेरी ओर आ रहे हैं उस पथ में और थोड़े उसी पथ में मुझसे दूर जा रहे हैं, बस इतना अंतर होता है। तो इस तरह से जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी सेवा भगवान के प्रति पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाती है, जिससे कि जैसे कि एक फूल अंकुर रूप में या बीज रूप में होता है तब भी वो फूल है लेकिन प्रकट रूप में नहीं है, जब अंकुर खिल जाता है तब पूरी तरह से वो फूल बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से सारे प्राणी, उनके हृदय में भगवत भावना है लेकिन भक्तों के संग में आने से वो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सारे प्राणी प्रकट रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, थोड़े अप्रकट रूप में कर रहे हैं अलग अलग तरह से, और वहां पे विष्णु मूर्ति को घेरे हुए सारे सिद्धियां थी, योग की सिद्धियां, अणिमा लगिमा और 424 तत्व वहां थे जिनसे कि भौतिक सृष्टि बनाई होती है। काल शक्ति, कर्म, संस्कार, तीन गुण इत्यादि, ये सारे भौतिक सृष्टि के जो भी गुण होते हैं सारे वहां आकर भगवान की सेवा कर रहे थे मूर्तिमान स्वरूप में। और ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे विष्णु मूर्ति सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ज्ञान से पूर्ण, आनंद से पूर्ण। और आगे फिर ब्रह्मा ने देखा ये सारे विष्णु मूर्ति वास्तव में कृष्ण ही हैं, परब्रह्म। और वो ब्रह्मा जी देख पा रहे थे कि किस तरह से भगवान इस सारे सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण कैसे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को साक्षात दिखाई पड़ा। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता थे लेकिन फिर भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से ब्रह्मांड को चला रहे हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैं ही चला रहा हूं, लेकिन जब ये दृष्टि हुई, एक जगह खड़े हुए, भगवान ने अंदर ही अंदर से ये सब दर्शन दिया। ब्रह्मा जी की आंखें बंद थी, अंदर की आंखों से भगवान जी ने उनको दर्शाया कि सारे भौतिक शक्तियां किस तरह से भगवान की सेवा कर रही हैं। तो उसी तरह से उनकी हालत हुई, उनकी दशा हुई जैसे कि अर्जुन की, जब उन्होंने किसका दर्शन किया, विराट रूप का। और फिर ब्रह्मा जी की क्या दशा हुई यहां वर्णन करते हैं कि उन विष्णु मूर्तियों के तेज के प्रभाव से भगवान या ब्रह्मा जी के सारे 11 इंद्रिय जो हैं उनको आश्चर्य का झटका लग गया और दिव्य आनंद में उनके सारे इंद्रियां सुन्न हो गईं और वो ऐसे चुपचाप शांत खड़े रहे मानो कि ग्राम्य देव, अर्थात कोई गांव में मंदिर होता है उसमें मूर्ति होती है, उस मूर्ति के सामने जैसे एक छोटे बालक के पुतली होती है, खेल खिलौना होता है, वो जैसे ग्राम्य देव के सामने रहता है वैसे ब्रह्मा जी को लगा। बिल्कुल सुन्न सुप्त हुए खड़े थे, बस हिल नहीं सके, बोल नहीं सके, देख नहीं सके, इतने विस्मित हो गए, इतने चकाचौंध हो गए, सारी इंद्रियां सुन्न हो गई उनकी। और फिर आगे चल के यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसे विस्मित होकर सोच रहे थे कि ये क्या है। ब्रह्मा जी देख भी नहीं पा रहे थे और जिस समय कृष्ण भगवान को पता चला उन्होंने अपने योग माया का पर्दा उठा दिया। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में ब्रह्मा जी को इरेश कहते हैं। ब्रह्मा जी का नाम इरेश है, पता है क्यों? ईश मतलब प्रभु या स्वामी, इरा, इरा क्या है, किसका नाम है? इरा सरस्वती देवी का नाम है। इरा के जो ईश्वर हैं वो हो गए इरेश। जिस तरह से उमा, उमा कौन है? पार्वती। उमा के ईश्वर हुए उमेश जो शिवजी का नाम है। उसी तरह से सुरगण, सुर अर्थात देवता, देवता के ईश्वर कौन है? सुरेश, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है सुरेश। इस तरह से इरेश, इरा, इरा के स्वामी, सरस्वती देवी के स्वामी। अभी सरस्वती देवी किस चीज की देवी है? विद्या की देवी, अर्थात उनकी बहुत बुद्धि होगी ना, बहुत ज्ञान होगा ना, इसलिए तो विद्या की देवी है। विद्या उनके पास नहीं होती तो विद्या की देवी भला कैसे बनती? अगर सरस्वती देवी विद्या की देवी है तो उनके स्वामी के पास कितनी विद्या होगी, कम या ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन ये विद्या के देवी के स्वामी ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, जिनको ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ज्ञान है, विद्या है, ये व्यक्ति अभी इन विष्णु मूर्तियों के सामने ऐसे चुपचाप विस्मित होकर, उनकी इंद्रियां सुन्न होकर खड़े हैं मानो ग्राम देव के सामने एक छोटी सी मिट्टी की पुतली। और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि ये बिल्कुल विस्मित हो गए हैं और ब्रह्मा जी कुछ भी नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। उस समय भगवान को समझ में आया कि मेरे वैभव को समझने के लिए और देखने के लिए और ब्रह्मा जी तैयार या योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी मेरे दर्शन को, इन सारे विष्णु रूपों को देखने के लिए, मेरे विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अभी योग्य नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान ने अपना योग माया का पर्दा उठा दिया। ये महामाया का पर्दा नहीं था, ब्रह्मा जी महामाया में नहीं थे, योग माया में पड़े थे। महामाया और योग माया में अंतर क्या है? माया मतलब जो नहीं है वो माया, लेकिन महामाया और योग माया, महामाया क्या है? भौतिक है, योग माया आध्यात्मिक। लेकिन महामाया का क्या असर होता है? महामाया का प्रभाव क्या होता है? महामाया का प्रभाव यह होता है कि जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ बैठते हैं, जो नहीं है वो सच को झूठ और झूठ को सच समझते हैं, उसको महामाया कहते हैं। जैसे कि इस संसार को के भोग को हम सच समझते हैं, ये शरीर को हम अपने आप खुद स्वयं समझते हैं, लेकिन योग माया क्या है? एक रूप से जैसे कि माता यशोदा के साथ, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या दिखाया, सारा ब्रह्मांड उनके मुखारविंद में दिखाया, तो उस समय माता यशोदा भूल गई कि ये मेरा बच्चा है। क्या सोचने लगी? अरे ये तो भगवान है। लेकिन साधारणतः माता यशोदा की भावना कभी ये नहीं थी कि ये भगवान है, ये तो मेरा बच्चा है। तो भला माता यशोदा ऐसे कैसे सोच सकती थी? क्योंकि कृष्ण भगवान के योग माया के पर्दे के भीते पीछे थी वो, इसलिए भगवान को अपना बच्चा मान रही थी, नहीं तो भला कैसे मान सकती थी। तो भगवान ने योग माया का पर्दा उठा दिया क्षणिक, और पर्दे उठाने की वजह से भगवान ने, यशोदा मैया ने सत्य को देख लिया, अरे ये तो भगवान है। और जैसे ही पता चल गया कि ये माता यशोदा के वात्सल्य भाव में धक्का पड़ गया है, तुरंत भगवान ने क्या किया, पर्दा नीचे कर दिया फिर से। अरे ये तो मेरा लाडला बच्चा है, मैं तो शायद स्वप्न देख रही थी, पता नहीं क्या, शायद भूत सवार हो गए मेरे पे या क्या हुआ, पता नहीं चल रहा। तो भगवान ने सत्य को कभी प्रकट किया, कभी अप्रकट कर दिया, इसको योग माया कहते हैं। लेकिन महामाया में क्या है? महामाया में हम बिल्कुल झूठी देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस संसार में कितना भोग है, कितना आनंद है इसमें, यही योग माया। तो ब्रह्मा जी के ऊपर जो भगवान ने माया चलाई वो योग माया है, वो इस तरह से आचार्य समझाते हैं। तो इस तरह से भगवान की शक्ति अपार है, अचिंत्य है। जो व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसको इस बात को सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए, और वो क्या है कि हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान अचिंत्य है। तो भगवान को समझने का सबसे पहला कदम कौन सा है? ये जानना कि हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब है कि भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? चलो समझ नहीं सकते तो चलो जाके सिनेमा देख लेते, कम से कम सिनेमा तो समझ सकते हैं। नहीं, पूरा पूरा प्रयास तो हमें करना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी पात्रता है, उतना हमें लेना चाहिए। जैसे पक्षी का उदाहरण कई बार दे चुके हैं, जितनी ऊपर पक्षी उड़ सकती है उसको उड़ना चाहिए, छोटी पक्षी कम उड़ सकती है, जो गरुड़ होते हैं बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। पक्षी का धर्म होता है उड़ना, तो पक्षी को उड़ना चाहिए। मनुष्य धर्म होता है भगवान को समझना, तो समझने का प्रयास कर सकते हैं। जितना हमारी बुद्धि साथ देती है, जितना हमारी चेतना मन इंद्रियां काबिल हैं इस बात के लिए, हमें करना चाहिए पूरी तरह से। जैसे पात्र जो ग्लास अलग अलग तरह के होते हैं, तो समुद्र को तो हम पूरी तरह से भर नहीं सकते ग्लास में, लेकिन फिर भी उस ग्लास में जितना ग्लास के अंदर जगह है उतना भर ले सकते हैं पानी। उसी तरह के पेट जो है सबके अलग अलग होते हैं ना, किसी के बड़े किसी के छोटे, कोई 10 रोटी खा सकते हैं, कोई 2 रोटी खा सकते हैं, सबकी पात्रता अलग अलग होती है। तो जिसके पेट में 2 रोटी खाने की जगह वो 2 रोटी खाए, वो 10 रोटी खाने का प्रयास करे तो गड़बड़ हो जाएगा, और जिसके पेट में 10 रोटी की जगह है वो 2 रोटी खाएगा तो उसके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। और जो व्यक्ति सोचेगा कि रोटी नहीं खाऊंगा उसके लिए और ज्यादा गड़बड़। तो जो व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास नहीं करता उसके लिए तो गड़बड़ है ही, लेकिन जो व्यक्ति समझ लेता है कि भगवान अचिंत्य है लेकिन फिर भी अपनी पात्रता के अनुसार मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए चाहिए भक्ति। भक्ति से ही भगवान हमें जो उचित ज्ञान है वो दे देते हैं। भगवान जानते हैं हमारी पात्रता क्या है, कैपेसिटी हमारी क्या है, इसलिए ये पात्रता भगवान हमें कैसे देते हैं, क्या करने से देते हैं? भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश चाश्व तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान कहते हैं कि भक्ति करने से ही तुम मुझे जान सकते हो हे अर्जुन। तत्वतः जानना मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से भगवान को जानना, जितना हमारी पात्रता है 1% 2% उतना जान सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार पूरा पूरा जान सकते हैं भगवान को केवल भक्ति करने से। तो ये जीव गोस्वामी भी बताते हैं कि जब तक हम ये समझते नहीं है कि भगवान अचिंत्य हैं, उनकी शक्ति अपार है, तब तक हम भगवत भक्ति में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रश्न अगर कोई पूछ सकता है कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं, भक्त के लिए ऐसा जीव प्रश्न नहीं होता। ऐसे कौन सा कार्य जो भगवान नहीं कर सकते, कोई है ऐसा कार्य? कोई भी नहीं। यह अचिंत्य शक्ति जो हमारे चिंतन के परे है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब भगवान ने योग माया का पर्दा उठा दिया ब्रह्मा जी के आंखों के सामने से, तो ब्रह्मा जी अपने आंखों को खोलने का प्रयास करने लगे। इतने सुन्न हो गए थे, इतना उनके इंद्रियों पे विस्मय का धक्का पड़ गया था कि सर चकरा रहा था कि आंखें भी खोल नहीं पा रहे थे। धीरे 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 से आंखें खोल रहे थे, मानो कि कोई व्यक्ति नशे से जाग रहा है। और शायद संसार में किसी व्यक्ति को ऐसे नशे का धक्का पड़ा नहीं होगा। धीरे से आंखें खोलते खोलते अपने बाहरी इंद्रियों को फिर से प्रफुल्लित कर रहे थे, जागृत कर रहे थे। और उस तरह से ऐसे लग रहा था कि मानो एक मृत व्यक्ति फिर से जीवित अवस्था में आ रहा है। और ऐसे अवस्था में उन्होंने देखा सारे ब्रह्मांड को, और उन्होंने देखा वृंदावन को, और वृंदावन में वो खुद खड़े हैं, और वृंदावन का रम्य वातावरण देखा, सब जगह हरियाली है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वासंती के ये है जो लताएं हैं। और एक अद्भुत दृश्य देखा कि वहां पर शेर और हिरण साथ साथ में खेल रहे हैं, वहां पर चील और कबूतर साथ साथ में खेल रहे हैं, वहां ऐसे सारे प्राणी और पक्षी जो एक दूसरे के शत्रु हैं वो साथ साथ में मिलजुल कर खेल रहे हैं, खा रहे हैं। ये सब उन्होंने देखा। और वृंदावन में जो दिव्य धाम है वहां कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, और इस तरह से मनुष्य पक्षी पशु सब प्रेम से साथ में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा वृंदावन का। ये है वृंदावन। ये कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात तीर्थयात्रों का भ्रमण कर रहे थे, उस समय जब वो झारखंड में जा रहे थे वन में, जो अब बिहार में है, वादग्रस्त जगह है, उनको अलग से वो उसका प्रांत राज्य बनाना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड उसी स्थान में चैतन्य महाप्रभु वन से गुजरते हुए नृत्य करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। और उस समय क्या हुआ, सारे प्राणी उनके संग में नृत्य करने लगे। शेर चार पैर पर चलते हैं लेकिन दो पैर उठाकर दो पैरों पर हाथ ऊपर करके कीर्तन कर रहे थे। भालू भी कीर्तन कर रहे हैं दो पैरों पर खड़े होकर, हिरण भी कर रहे हैं, हिरणी भी कर रहे हैं, सारे पक्षी भी अपने पंख उड़ाकर वो थप थप झपाट झपटाकर जो है वो भी कीर्तन कर रहे हैं। सारे जो पशु वैसे साधारण तो जो शत्रु हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में आकर संकीर्तन कर रहे हैं। ये सत्य दृश्य है। बलभद्र भट्टाचार्य जो उनके साथ में थे उन्होंने जाके इसका वर्णन किया। इस तरह से अन्य भक्तों को पता चल गया कि झारखंड में चैतन्य महाप्रभु ने क्या लीला की पशुओं के संग में। तो इस तरह से वृंदावन में ये होता है। क्रिश्चियन लोग भी इसी को मानते हैं कि भगवान के धाम में ऐसे ही होता है। तो अलग अलग तरह के प्राणी जो वास्तव में एक दूसरे के शत्रु हैं वो प्रेम से रहते हैं, उसको गार्डन ऑफ ईडन बताते हैं वो ईडन। इस तरह से ये सब अपने सनातन धर्म से सब आता है, अपने शास्त्रों से ही आता है, लेकिन वो सब भूल गए हैं, इसको अलग अलग अभी नाम दे रहे हैं, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म। वैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में असलियत में ऐसे होता है। आज भी ऐसे साधु बाबा हैं जो गाय को रखते हैं और वहां शेरों को गाय का दूध पिलाते हैं, आओ दूध पी लो। आज भी तो पहले जमाने में और कितना हुआ होगा, छह गोस्वामी के समय में ऐसा चलता था क्योंकि वहां के सारे प्राणी रहते थे। वृंदावन की बात दूर है, लेकिन साधारण जंगल में भी कई बार देखा जाता है कि कई तरह के प्राणी आकर किसी तालाब में पानी पीते हैं और एक दूसरे को परेशान नहीं करते, अपना अपना काम करके पानी पीकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जंगल में एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए लोग। जंगल से बुरी हालत तो हमारे शहरों में है, हमारे समाज में है, मनुष्य समाज में एक दूसरे के ऊपर छा गए हैं सब लोग, टूट पड़ते हैं, छोटी सी बात में झगड़ा, छोटी सी बात में तुम है, एक दूसरे का खून करते हैं, एक दूसरे को पीछे से कुछ न कुछ निंदा करते रहते हैं। तो पशु तो अच्छे हैं हमसे, साधारण जंगल में, वृंदावन के जंगल में नहीं। तो साधारण जंगल में यह है तो वृंदावन के जंगल में कितना हुआ होगा। जब हम जंगल या वन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक भयानक कुछ दृश्य आता है कि जंगल में क्या होगा, लेकिन वास्तव में वृंदावन का जंगल ऐसे नहीं है। बड़ा रम्य वातावरण, सभी लोग साथ में रह रहे थे, और ये वृंदावन का गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बंदरों को बहुत खिलाया, माखन खिलाया ना, माखन चोरी करके बंदरों को खिलाते थे, और जब वो पकड़े जाते थे तो क्या बोलते थे कि मैंने तो माखन नहीं चोरी की, और वैसे भी तुम्हारे माखन के क्या गुण है, हमारे लिए खाने लायक है क्या? बिल्कुल नहीं, देखो बंदर भी नहीं ले रहे हैं तुम्हारा मक्खन, तो तुम्हारे मक्खन में कौन सी बड़ी बात है कि मैं चोरी करने आऊं, मेरे घर में क्या कम मक्खन पड़ा है। इस तरह से कृष्ण भगवान ने हमें उदाहरण दिखाया, आदर्श पेश किया है कि प्राणियों को भी खिलाना चाहिए। जो भी भगवान ने दिया है सृष्टि में, केवल मनुष्य के लिए नहीं दिया, पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए, सबके लिए दिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मक्खन तो खाते थे, साथ साथ बंदरों को भी बांटते थे। इसलिए जो वृंदावन में बंदर होते हैं, जो अपना भोजन छीन लेते हैं, ठीक है छीन ले तो दे दीजिए, उनका भी अधिकार है। भगवान ने सबको अधिकार दिया खाने के लिए, पीने के लिए। इसलिए जो हमारे खेती में भी जो हम बीज डालते हैं, और एक पौधे में से कितने बीज आते हैं, अनेक हजारों, ये हजारों बीज में से मनुष्य का अधिकार थोड़े बीजों पर है, बाकी जो बीज इत्यादि हैं वो पक्षी लेंगे, कीड़े लेंगे, चूहे लेंगे, उनका भी अधिकार है। सृष्टि भगवान ने सबके लिए बनाई, केवल हमारे लिए नहीं बनाई। तो इसलिए लोग हमेशा इन प्राणियों को मार डालते हैं, सांप को मार डालते हैं, सांप कितना लाभदायक है, अपने आप में भगवान ने संतुलन करके रखा है, एक प्राणी दूसरे को खाता है, जीवो जीवो से जीवनाम, और इस तरह से प्रकृति का, निसर्ग का जो संतुलन है वो खुद ब खुद बनाए रहता है। मनुष्य बीच में आके कुछ गड़बड़ कर डालता है, जैसे ये मेंढक, उनको उनका निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहां वो संशोधन करते हैं उनको काटकर, वैज्ञानिक लोग। और हमारे स्कूल कॉलेज में भी जब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो मेंढक को काट कर उनको दिखाते हैं, ये इसका पेट है, ये इसका ये है वो है, तो कितने मेंढकों की हत्या होती है, वो भी जीवित अवस्था में उनको रखते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में मेंढकों की हत्या, या मेंढकों को पकड़े जा रहे थे, तो खेतों में क्या हो गया पता है आपको, खेतों में इतने जो कीड़े थे जो खा जाते हैं अन्न को, पौधों को, वो इतने बढ़ गए कि इनको फिर से मेंढक लाने पड़े, कीटनाशक भी काम में नहीं किए, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ है कंट्रोल, लेकिन हमने बीच में आके सोचा कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हमने सोचा कि हम भगवान से अच्छा जानते हैं, कि कैसे हमें ठीक ठाक अपनी खेती करनी चाहिए। तो ये सब कीटनाशक लाए, ये वो सब, अगर कीट है वहां इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो इस तरह से नैसर्गिक पद्धति से सब करने के लिए ये एक दर्शन इसके पीछे होना चाहिए, फिलोसफी, एक विचार धारणा होनी चाहिए कि भगवान ने ये पृथ्वी के ऊपर सब कुछ सबके लिए बनाया है, इसलिए हमें पक्षी जब आते हैं हमारे खेती में कुछ खाने के लिए उनको मारना नहीं चाहिए, खाने देना चाहिए। पक्षी हमारे तरह नहीं होते, दो चार दाने खाकर खुश होकर चले जाते हैं, हम जैसे नहीं कि खेती का खेती उखाड़ कर ले जाने का प्रयास करें। तो दो चार दाना खाने हैं उनको तो खाने दीजिए, क्या है उसमें। ये अगर एक बीज से 100 बीज होते हैं, 10 बीज पक्षी के लिए है, 10 बीज पशु के लिए, 10 बीज कीड़ों के लिए, 10 बीज इनके उनके लिए, हमारे लिए 20-25-30 बच जाए बहुत है मनुष्य के लिए। तो देखिए कृषि के पीछे भी बहुत दर्शन है, एक फिलोसफी है, विचार है, जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है। बस पक्षी आए तो बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं, या तो फिर वो आदमी को रखते हैं बनाकर ताकि पक्षी आए नहीं। क्यों पक्षी को रोक रहे हैं, पक्षियों को आने दीजिए। हाँ, जो ऐसे पशु होते हैं सारा का सारा खा डालते हैं उनसे बचना है कभी कभी, जैसे सुअर होते हैं, कुत्ते होते हैं, अगर सारा का सारा नष्ट करके चले जाते हैं, नष्ट करने वालों पशु से हमें बचना चाहिए। लेकिन पक्षी कभी कुछ नष्ट नहीं करते, थोड़ा दो चार दाने खा के चले जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही हमें दिखलाया, वृंदावन में सबको बांट के खाते थे वो। इसलिए गृहस्थ आश्रम में खास करके एक धर्म होता है कि गृहस्थ आश्रम में केवल न केवल अतिथियों के लिए रखना चाहिए लेकिन प्राणियों को भी खिलाना चाहिए। लेकिन घर में प्राणियों को नहीं रखना चाहिए, घर में कुत्ते वगैरह नहीं रखने चाहिए, लेकिन जो बाहर है उनको थोड़ा बहुत खिलाएं तो कोई बात नहीं। ये है मनुष्य धर्म, कितना गहरा है। देखिए भगवान ने कैसा सुंदर सिस्टम बनाया है, तो कितनी सुंदर पद्धति बनाई हमारे लिए। तो खैर वृंदावन का पूरा दर्शन किया भगवान ब्रह्मा जी ने, और फिर उन्होंने साक्षात भगवान को देखा। यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम, थोड़ी अलग मात्रा में गाएंगे, तत्रोद्वहत् पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्मा द्वयं परमानंतम अगाध बोधम वत्सान सखीनिव पुरा परितो विचिन्वद एकम सपाणि कवलम परमेश चष्ट। तत्र उस समय उधर वृंदावन में उद्वहत जो भगवान ने ग्रहण किया था, क्या ग्रहण किया था, पशुपवंश शिशुत्व नाट्यम, बड़ी सुंदर ढंग से बताया सुखदेव गोस्वामी। पशु मतलब वृंदावन के पशु, कौन वृंदावन के पशु कौन है, गाय है ना, गाय प प मतलब पालन करने वाले, पशु को मतलब वृंदावन के गोप गोपियां, पशुप वंश अर्थात उनके परिवार में उनके कुटुंब में, शिशुत्व नाट्यम शिशु का नाटक कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने वृंदावन में अचानक उस व्यक्ति को देखा जो कि पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम गोप जाति में जन्म लेकर वहां साधारण गोप का शिशु का नाटक कर रहा था। सुंदर वर्णन है, देखिए ब्रह्माद्वयम परम अनंतम अगाध बोधम, कौन ऐसे नाटक कर रहे थे, ब्रह्म परम ब्रह्म जो अद्वय हैं, अद्वितीय हैं, परम हैं, अनंत हैं, जो अगाध बोध है, जिनकी बुद्धि अगाध है, जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वत्सान सखीन इव पुरा परितो विचिन्वद। तो उन्होंने देखा कि जैसे पुरा जैसे वो कर रहे थे पहले, परितः सब जगह विचिन्व ढूंढ रहे हैं वत्सों को और उनके सखों को। एकम सपाणी अकेले हैं, सपाणी अपने हाथों में पानियों में क्या है, कवलम दही और चावल, परमेष्ठी अचष्ट, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का नाम है, अचष्ट देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में जब वृंदावन का दर्शन समाप्त हो गया, सारे ब्रह्मांड का दर्शन समाप्त हो गया, उसके बाद में ब्रह्मा जी ने साक्षात फिर से श्री कृष्ण को देखा, वही ग्वाल बाल के रूप में। विष्णु मूर्ति सब अदृश्य हो गए, अप्रकट हो गए, फिर से ग्वाल बाल आ गए, कृष्ण आ गए उनके सामने। और क्या देखते हैं, जैसे पहले हुआ था आपको स्मरण होगा कि जब सारे पिकनिक के लिए बैठे थे, भोजन के लिए बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में क्या था, चावल और दही और उसमें फल इत्यादि, और दाहिने हाथ में अचार। तो इस समय ब्रह्मा जी देख रहे वही दृश्य, और कृष्ण भगवान यूं हाथ में दही और चावल लेकर ढूंढ रहे हैं, कहां गए मेरे ग्वाल बाल, कहां गए मेरे मित्र, कहां गए मेरे वत्स। और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं। ये इतना सा पूरा दर्शन किया, दिखाया, इतना आश्चर्यचकित कराया ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्म भगवान ऐसे घूम रहे हैं जैसे साधारण बालक की तरह, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसे खड़े होकर देख रहे थे, तो उस समय भगवान जी वहां खड़े होकर उनको दिव्य रूप का दर्शन दे रहे हैं, उस सुंदर मधुर रूप का दर्शन दे रहे हैं। ये जो रूप है भगवान का, उनके भक्तों के लिए एक रसायन है। रसायन क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए, हमको तंदुरुस्त बनाता है, सतर्क बनाता है ना। इसलिए आप सब च्यवनप्राश ये वो सब लेते हैं ना कभी कभी। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारा रसायन क्या है, कृष्ण का सुंदर रूप। जब उनके भक्त उनका सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, स्फूर्ति हृदय में मिल जाती है, सतर्क हो जाते हैं भक्ति में। तो इसी सुंदर रूप का दर्शन ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज रूप इस समय नहीं देखा, नारायण रूप नहीं देखा, सुंदर एक साधारण बाल रूप में, ग्वाल बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण वहां भ्रमण कर रहे हैं, एक बहुत ही निपुण अभिनेता की तरह। ऐसे बिल्कुल दिखा नहीं रहे हैं कि मैं भगवान हूं या मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और मैंने क्या अद्भुत कार्य करके दिखाया है तुम्हें। नहीं, हम कोई अद्भुत कार्य करते हैं तो हमें उसका गौरव गर्व होता है कि देखो, और फिर हम थोड़ा बहुत पीठ सीधा करके कॉलर ऊपर करके चलते हैं। ब्रह्मा जी तो ऐसे, भगवान श्री कृष्ण ऐसे चल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्या मालूम, मैं तो ग्वाल बाल हूं, मुझे ये सब माया से क्या लेना देना है, मैं तो मेरे मित्रों को ढूंढ रहा हूं, ग्वालों को ढूंढ रहा हूं, ये दही चावल मुझे खाना है, ऐसे घूम रहे हैं। और इससे प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भगवान के लिए चतुर्मुख ब्रह्मा जी तो बड़े तुच्छ हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी इतने तुच्छ हैं, तो हमारे चतुर्मुख वैज्ञानिक कितने तुच्छ होंगे, जो कि अपने बुद्धि से भगवान को नापतोल करने का सोच रहे हैं। देखिए कितने मूर्ख हुए, ब्रह्मा जी के सामने हमारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं, और कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी कुछ नहीं, तो कृष्ण के सामने वैज्ञानिक क्या हुए। लेकिन फिर भी अपने बुद्धि के बल से वो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय जब भगवान का ये सुंदर रूप ब्रह्मा जी ने देखा, तो फिर क्या किया ब्रह्मा जी ने, आइए सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी का वर्णन। ये श्लोक भी आपके सामने है।
दृष्ट्वा त्वरेण निज दोर नटोऽवतीर्य पृथ्व्या वपुः कनक दण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मम् नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम्
दृष्ट्वा द्वारा। यह देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। तो ब्रह्मा जी के विस्मय की कोई सीमा नहीं थी। इतना सब दर्शन करने के बाद में जब ब्रह्मा जी ने फिर से कृष्ण को, जो कि परम ब्रह्म है, एक साधारण ग्वाल बाल के रूप में देखा, तो उनकी क्या दशा हुई इसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। दृष्ट्वा, उस समय देखा ब्रह्मा जी ने इस रूप को, इस सुंदर ग्वाल बाल के रूप को, और फिर क्या किया उन्होंने, त्वरेण, त्वरेण मतलब त्वरित, बहुत ही जल्दी, तुरंत, निज धोर नटो वतीर्य, निज अपना ही, धोर नटो मतलब अपना वाहन, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, हंस। हर एक व्यक्ति का अलग अलग वाहन होता है ना, इस संसार में भी हम देखते हैं किसी का मारुति गाड़ी है, किसी का स्कूटर है ना, किसी के और कोई गाड़ी है, हम जैसे गरीब है हमारे पास पैदल हम आते हैं, तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग वाहन रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, सारे जो देवता होते हैं उनके अलग अलग हंस होते हैं और अलग अलग वाहन होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का हंस है शिव जी, किन के ऊपर सवार होकर चलते हैं, नंदी बैल, और विष्णु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर जाते हैं, और इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर, और गणेश जी कुंदीर चूहे के ऊपर जाते हैं, कार्तिकेय गणेश के भाई मोर के ऊपर, गंगा जी जल में है लेकिन किन के ऊपर सवार होकर जाती है, कमल नहीं, मछली के ऊपर सवार होकर जाती है। इस तरह से सारे सारे देवी देवता हैं, उनके अलग अलग वाहन होते हैं, और ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पे खड़े थे। अब तक जो भी घटना हुई, अब तक जो भी दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, सारा विश्व रूप भी देख लिया, वृंदावन का दृश्य भी देख लिया, और इस समय तक ब्रह्मा जी अपने गाड़ी से बैठकर खिड़की से ही देख रहे थे, अर्थात अपने हंस वाहन के ऊपर ही स्थित थे। लेकिन जब पुनः उन्होंने भगवान को चतुर्भुज रूप से परिवर्तित करके अपना मूल रूप दिखाया भगवान ने, उस समय ब्रह्मा जी तुरंत उतर पड़े अपने हंस वाहन से, अवतीर्य नीचे आए, पृथ्व्याम वपुह, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी के ऊपर, वपुह अपने शरीर को कनक दंडम इवाभिपात्य, पात्य मतलब नीचे, नीचे आना, निपात, इसलिए ये शब्द आता है प्रणिपातेन, है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रकृष्ट रूपेण निपात, पूरी तरह से शरणागत हो जाना। तो ब्रह्मा जी शरणागत हो गए, इवाभिपात्य, कैसे शरणागत हो गए, दंडम, दंडम मतलब एक डंडे की तरह गिर गए, इसको दंडवत कहते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर कौन से के क्रांति क्या है, कौन से रंग का है, स्वर्ण रंग का है, कनक, इसलिए यह कनक दंडम। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने दंडवत किया एक डंडे के बराबर, तो ऐसे लग रहा था कि एक सोने का डंडा है, क्योंकि स्वर्ण रंग से चमक रहे थे वो। तो ये दंडवत, वत मतलब की तरह है, दंड, तो जब हम दंडवत करते हैं इसको दंडे के समान हम रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें केवल दंडवत कहना नहीं चाहिए, करना चाहिए, कहते हैं दंडवत प्रभु जी, नहीं करना चाहिए दंडवत, मुंह से ऐसे कहते हैं दंडवत करना चाहिए। तो खैर पूरी तरह से दंडवत लगा दिया ब्रह्मा जी ने, और फिर स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभिर अंघ्रि युग्मम, तो उनके चार मुख हैं, चतुर्मुकुट है, तो चार मुकुट क्या किया, स्पृष्ट्वा स्पर्श कराया, किससे स्पर्श कराया, अंघ्रि युग्मम, भगवान श्री कृष्ण में क्रे चरण कमलों से स्पर्श कराया चारों मुकुट। अभी देखिए ये कैसे हो सकता है, जब हम अपने आप को नीचे करते हैं तो एक ही सर लग सकता है ना, चार, एक इधर, दो इधर, एक इधर, एक पीछे, लेकिन ब्रह्मा जी ने न जाने कैसे चारों मुकुट जो है एक साथ स्पर्श कराए, नीचे सब लाए। अब ब्रह्मा जी वो कर सकते हैं, कैसे किए वो अब वही जाने और कृष्ण जाने। तो चारों मुखों को एक साथ में उनको मुकुट जो है वो स्पर्श कराए, युग्म मतलब दोनों जोड़ी, भगवान के चरण कमलों की जोड़ी, और नत्वा इस तरह से उनको प्रणाम किया, मुद, मुद मतलब मुदित, मुद धातु मतलब आनंद, आनंद के अश्रु सुजलैर, अश्रु आंखों से अश्रु बह रहे थे, सुजल केवल जल नहीं सुजल बहुत शुद्ध। क्यों शुद्ध? क्योंकि भक्ति के आंसू जो होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं, वो जल शुद्ध होता है इसलिए उसको सुजल कहते हैं। लेकिन संसार का जो रोना धोना होता है उससे जो अश्रु निकलते हैं वो सुजल नहीं दुर्जल, वो तो गंदगी है। लेकिन भक्ति भाव से प्रेम भाव से जो अश्रु बहते हैं शुद्ध भक्त के आंखों से उसको सुजल कहते हैं। देखिए कितनी काव्यात्मक ढंग से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, मुद अश्रु सुजलैर अकृत अभिषेकम, अभिषेक कर दिया भगवान के चरण कमलों का अपने शुद्ध आंखों से जो जल बह रहा था आंसुओं से भगवान का अभिषेक किया। और इस समय भगवान जो हैं ब्रह्मा जी पृथ्वी का स्पर्श कर रहे थे। वैसे देवी देवता जब आते हैं ना पृथ्वी लोक के ऊपर तो पृथ्वी लोक का स्पर्श नहीं करते, हमेशा 6 इंच के ऊपर में रहते हैं, हवा में रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके अंदर वो शक्ति है। क्यों नहीं खड़े नीचे आ जाते? उनको ये करना है कि हम तो अलग है मनुष्य से, मनुष्य हम श्रेष्ठ है, थोड़ा एक प्रकार का घमंड एक अहम रहता है कि मैं तो मनुष्य से श्रेष्ठ हूं, मैं उनकी तरह कैसे नीचे जमीन पर खड़े हो जाऊं। जैसे एक बड़ा आदमी सोचता है कि मैं कहीं जाऊंगा भले यहां से वहां हो तो मुझे नौकर चाकर गाड़ी सब में साथ में जाना चाहिए, मैं ऐसे पैदल कैसे जा सकता हूं, एक तरह का स्टेटस होता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे जाऊं। तो देवी देवतागण भी ऐसे सोचते हैं कि मनुष्य की तुलना से तो हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उनकी तरह जमीन का स्पर्श कैसे करें, इसका मतलब कि हम थोड़े नीच हो गए, साधारण हो गए, लेकिन हम तो असाधारण हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने अब ये अहम को त्याग दिया, इसलिए यहां उन्होंने दंडवत किया। यहां बताया है कि पृथ्वी पृथ्व्याम पृथ्वी के ऊपर अर्थात 6 ऊंच ऊपर से दंडवत नहीं किया, पृथ्वी का स्पर्श करके पूरी तरह से जमीन में लेट गए, दंडवत किया। इसका मतलब कि ब्रह्मा जी बहुत नम्रता का प्रदर्शन कर रहे थे। और उस समय ये सब जब चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत गंभीर स्वरूप धारण किया था, हालांकि बाल स्वरूप में कुमार स्वरूप में फिर भी गंभीर देख रहे थे, मानो कि ब्रह्मा जी हैं नहीं हैं देख भी नहीं रहे थे उनकी ओर। मान लीजिए प्रधानमंत्री हमको मिलने आए और हम अपने काम में लगे हुए हैं तो कैसा रहेगा, अद्भुत है, बड़ा दृश्य, विचित्र दृश्य है। तो सारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी आए हैं और कृष्ण भगवान ग्वाल बाल का रूप कर रहे हैं, जैसे कि मानो ब्रह्मा है ही नहीं सामने। उनको क्या है पड़ी है भगवान को, मेरे ग्वाल कहा गए, ग्वाल बाल कहा गए, मेरे मित्र कहा गए, मेरे वत्स कहा गए, क्योंकि ग्वाल बाल का रूप लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो कि कठपुतली से के रूप में चला रहे हैं सब, इस एक ये सृष्टि क्या है, कठपुतली के समान है, सबको चला रहे हैं ऐसे, और वो अपनी इच्छा से सबको हिला रहे हैं नचा रहे हैं। और ये सारा लीला, ये सारी लीला, सारा नाटक जो भगवान ने किया है केवल अपने दिव्य शक्ति का और ऐश्वर्य का प्रदर्शन सारे ब्रह्मांड के लिए करने के लिए उन्होंने किया। और उस समय उसके बाद में क्या हुआ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। उत्थाय उत्थाय मतलब बार बार ऊपर उठना फिर से दंडवत करना, ऊपर उठना फिर से दंडवत करना, बारंबार क्षमा याचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको बहुत अभी घबराहट भी हो गई है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। अभी समझ में आया कि ये ग्वाल बाल है, कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं है, साक्षात पर ब्रह्म है। तो दंडवत किया फिर से उठा, उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन, लंबे समय तक ऐसे करते रहे क्योंकि बहुत डर गए थे और हृदय में ये बहुत पश्चाताप भी हो रहा था कि मैंने भगवान के प्रति कितना बड़ा अपराध किया, अपने आप को मैंने क्या समझ लिया। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन, पतन मतलब गिर गए। आस्ते महित्वं प्राग दृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। और जो प्राग दृष्टम, जो पूर्व पहले दृष्टि उन्होंने दर्शन किया था भगवान का, स्मृत्वा स्मृत्वा स्मरण करने लगे। कितना करने लगे? पुनः पुनः, और बार बार वही स्मरण करने लगे कृष्ण भगवान का, जो सुंदर रूप का दर्शन उन्होंने किया। और दंडवत करते करते, हमने कई बार देखा है, कई लोग दर्शन करने आते हैं तो भगवान के सामने यूं करते हैं, यूं करते हैं, ऊपर वो क्या कहते हैं, बैठक, हाँ क्या कहते हैं, बैठक कहते हैं, दंड बैठक करते हैं, और फिर 10 बार अपना सर ठोकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि इसने कुछ पाप किया है, अभी आया है, क्षमा याचना कर रहा है भगवान की। कम से कम उतनी तो ईमानदारी है भगवान के सामने आके कुछ कर रहा है, अपने आप को ये कर रहा है, है ना। तो बार बार ऊपर नीचे करते हैं ना, ब्रह्मा जी भी वही कर रहे हैं, और करते करते फिर ब्रह्मा जी स्मरण भी कर रहे हैं उस सुंदर रूप का। तो ये कुमार और पौगंड अवस्था भगवान की सबको भ्रमित कर देती है, क्योंकि कौन सोच सकता है कि ये परब्रह्म हो सकते है। इतने कोमल नाजुक बच्चे जो कि सबके साथ दोनों हाथ से खा रहे हैं, दही चावल खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी भ्रमित हो गए। तो साधारण व्यक्तियों की बात तो दूर है, इस तरह से भगवान की लीला है। और फिर शणैर अथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद उद्वीक्ष्य विनम्र कंधर कृतांजलि प्राश रयवन समाहितः स वे पथुर गदगद ऐलेय तलाय। शनैर बहुत धीरे धीरे से, अथ उत्थाय फिर उठे ब्रह्मा जी आखिरी बार उठे, और फिर क्या किया, विमृज्य लोचने, लोचन मतलब आंखें, विमृज्य मतलब पहुंचना, क्योंकि आंखों से अश्रु बह रहे थे ना, तो आंखों से आंसू पहुंच रहे थे। अब मनुष्य के आंखों से आंसू बहे और उसे पोछना पड़े तो क्या करता है, दो हाथों से यूं पोछ लेता है, सही बात है। लेकिन ब्रह्मा जी की क्या परिस्थिति थी, दो हाथ और कितने मुख, चार मुख, मतलब कितने आंखें, आठ आंखें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि अपने दो हाथों से पहले ये दो आंखें पूछे, फिर ये दो पूछे, फिर ये दो पूछ लिए, दो दो करके अपनी आंखें पोंछते रहे, क्योंकि आठों आंखों से रो रहे थे ना, तो पहले एक एक करके वो दो दो करके ऐसे पोंछने लगे अपनी आंखें, हाथ दो ही थे। ऐसे ऐसे विमृज्य लोचने मुकुंदम उद्वीक्ष्य विनम्र कंदराह, और ऊपर कृष्ण की ओर देखने लगे, और विनम्र कंधरा, विनम्रता से कंधर उनका पीठ जो उनके कंधे झुक गए, कृतांजलि ही ऐसे मुद्रा में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रश्रयवान मतलब बहुत नम्र होकर, समाहितः उनके पास में आए, उनका मन बिल्कुल केंद्रित करके, स वे पथुर, वे पथु शरीर में अर्जुन का भी वर्णन आता है भगवत गीता में, अर्थात उनका शरीर कांप रहा था भक्ति भाव से, इतना उनकी भक्ति भावना जागृत हुई, गदगद हो गया, उनके आवाज में गदगद होने लगा। और फिर वो अयलता मतलब स्तुति प्रार्थना अर्पण करने लगे भगवान के प्रति, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना आरंभ हुई। और ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना की ये हम कल सुनेंगे, और फिर कल ही इस ब्रह्म विमोहन लीला का अंत भी हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं, दो है, दो हाथ वो कर रहे हैं, देखिए चतुर्भुज तो विष्णु है, हाँ चार हाथ तो थे, सही है, उसमें धारण किए हुए हैं, लेकिन एक एक करके वो पहुंच रहे हैं, दो हाथ इधर, दो हाथ इधर, स
साइड में, सही बताया आप, चार हाथ है। कभी चार भी प्रकट कर रहे होंगे, कभी दो भी, अलग अलग जगह अलग अलग दृश्य मिलते हैं। कई बार ब्रह्मा जी को दो भुजाओं वाले दिखाते हैं, कभी कभी चार भुजाओं वाले दिखाते हैं, लेकिन मुख तो हमेशा चार रहते हैं। और इन चारों मुखों से, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। हाँ, ये वैसे भी चार हाथ भगवान ब्रह्मा जी के काम में आते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो भक्त को कितने भी हाथ हो जाएं, मुख हो जाएं, सारे अंगों को वो भगवान की सेवा में ही लगाएगा। इसलिए भक्त के लिए कोई भी चीज व्यर्थ नहीं रहती, हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हरे कृष्ण।